समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटर्स तथा आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। आज का ये अंक आप सुनेंगे देवेंद्र त्रिपाठी और वैभव ज्योत्ना श्रीवास्तव के साथ। गुड मॉर्निंग वैभव।
नमस्कार देवेंद्र, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर लवली लिसनर्स ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। इट इज वेरी राइटली सेड दैट वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग, बट वी ऑल कैन स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक अ न्यू एंडिंग फॉर आवरसेल्व्स। लाइक एवरी डे वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, इन विच फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी शैल ब्रिंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम कलाइडोस्कोप, एंड ऑफ कोर्स सम हिस्टोरिकल ट्रिविया रिलेटेड दिस डे, दैट इज द 4th ऑफ अक्टूबर। सो देवेंद्र, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
जी, शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार का मानना है कि इनकी गतिविधियां देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा हैं। ये गुट विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और अपने मंसूबे पूरे करने के लिए लोगों में आतंक फैलाते रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि इन संगठनों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया जाता तो ये अपना विस्तार करेंगे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी रखेंगे।
The Assam government has given its in-principle nod to the initiation of the process for socio-economic assessment of the 5 indigenous Muslim communities, Goria, Muria, Deshi, Sayed and Jolha. This decision was taken at a meeting chaired by Chief Minister Hemant Biswa Sarma in Guwahati. He instructed the concerned authorities to take necessary measures so as to ensure the upcoming socio-economic assessment. Mr. Sharma said that on its completion, the data can be utilized by the Assam government to take steps for comprehensive socio-political, academic and economic upliftment of the 5 indigenous Muslim communities. The state cabinet has already approved the indigenous status for these 5 communities. The chief minister's office pointed out in a statement that Mr. Sharma had last year participated in an interactive session with the intellectuals and leading citizens of the indigenous Muslim communities. This was followed by formation of several subcommittees with representatives of indigenous Muslims to deliberate on various issues related to the community.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्चा बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर राज्य, हर जिला और हर गांव विकसित होगा। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बस्तर में नगरनार में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए इस्पात संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया।
The Prime Minister's Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, the PM Swanidhi scheme, has achieved a momentous milestone by extending its support to more than 50 lakh street vendors across the nation, an initiative under the aegis of the Ministry of Housing and Urban Affairs. The scheme has been instrumental in bringing street vendors into the formal economic fold. Prime Minister Narendra Modi's vision to broaden the scheme's reach has prompted concerted efforts towards its expansion beginning on the 1st of of July this year, a campaign was launched by the ministry revising the targets to be achieved under the scheme. Several high-level reviews and monitoring were taken during this period. This collective effort resulted in disbursement of almost 66 lakh loans with a value exceeding 8,600 crore rupees to over 50 lakh street vendors. Over the past 3 months, states have successfully onboarded more than 12 lakh new vendors.
निर्वाचन आयोग की पूरी टीम ने तेलंगाना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने कल शाम हैदराबाद में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। पुलिस और राजस्व सहित 20 से अधिक एजेंसियों ने निर्वाचन आयोग को चुनाव तैयारियों की जानकारी दी। आयोग ने कल शाम 10 राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की और उनके सुझाव लिये। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान, मतदाता सूची और चुनाव खर्च से संबंधित मुद्दे उठाए गए। निर्वाचन आयोग कल सुबह तेलंगाना के सभी 33 जिलों के चुनाव अधिकारियों तथा पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों के साथ आज बैठक करेगा। राज्य के प्रमुख लोगों, दिव्यांगों और युवा मतदाता से भी बातचीत होगी ताकि मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाई जा सके। निर्वाचन आयोग का दल कल मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी चुनाव तैयारियों पर विचार विमर्श करेगा।
एंड नाउ इन सम इंटरनेशनल न्यूज, इन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी शोडाउन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर केविन मैकार्थी हैज बीन वोटेड आउट ऑफ द जॉब। द 216-210 वोट मार्क द फर्स्ट टाइम इन history that the House removed its leader, with 8 Republicans voting along with 208 Democrats to remove McCarthy. The rebellion was led by Representative Matt Gaetz, a far-right Republican from Florida. He had accused the party leader of not doing enough to cut federal spending or to standing up to Democratic President Joe Biden. McCarthy's ouster as a speaker brings legislative activity in the House to a halt, with another government shutdown deadline looming on November 17th if Congress does not extend the funding.
जी, और ये तो रही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और अब क्योंकि एशियाई खेलों में भारत का अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है, एशियाई खेल खबरें आइए सुनते हैं अंकुर से।
हांगचाओ एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। खेलों के 10वें दिन कल भारत को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक मिले। पदक तालिका में भारत 15 स्वर्ण, 26 रजत और 28 कांस्य पदकों के साथ कुल 69 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। एथलेटिक्स में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में अनुरानी ने और 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के दिक्थोलान में तेजस्वी शंकर ने और 800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफसल ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विंध्या ने कांस्य पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में प्रीति और नरेंद्र ने कांस्य पदक हासिल किया। कैनोइंग डबल में अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी में कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में आज ज्योति वेन्नम और ओजस देवताले मलेशिया की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष कबड्डी टीम ने आज अपने ग्रुप मैच में थाईलैंड को 63-26 से हराया। अगला मुकाबला कल चीनी ताइपेई से होगा। एशियाई खेलों में आज भारत को एथलेटिक्स में पदकों की उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। सबकी निगाहें पुरुषों के जेवलिन थ्रो में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा तथा किशोर कुमार पर होंगी। पुरुषों और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम स्वर्ण पदक की बड़ी दावेदार होगी। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह और अविनाश सालवे ट्रैक पर उतरेंगे। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में हरमिलन बैंस और चंदा चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के ऊंची कूद में संदेश और अनिल सर्वेश मैदान में उतरेंगे। महिलाओं की ट्रिपल जंप में वर्के निलिकल खेलेंगी। 35 किलोमीटर रेस वॉक में मिक्स टीम में रामबाबू और रानी मंजू की जोड़ी मैदान पर है। तीरंदाजी में रिकर्व मिक्स टीम क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। स्क्वाश में सौरभ घोषाल सिंगल्स के और मिक्स डबल्स स्पर्धा में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी अपनी चुनौती रखेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, एचएस प्रणय, किदम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। बॉक्सिंग के 57 किलो भार वर्ग में प्रवीण सेमीफाइनल मैच में रिंग में उतरेंगे। वहीं महिलाओं की 75 किलो भार वर्ग में लवलीना बोरगोहाई अपना स्वर्णिम पदक पक्का करने के लिए फाइनल में उतरेंगी। साथ ही हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत साउथ कोरिया से खेलेगा।
और खेल खबरों के बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महानगरों की तरफ। और वैभव, आपके पास क्या खबरें हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से?
यस देवेंद्र, स्टार्टिंग द मेट्रो न्यूज सेक्शन फ्रॉम चेन्नई, वेयर द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर एंड प्रिवेंट फोर्सेज फ्रॉम डिसरप्टिंग पब्लिक पीस इन द स्टेट, इनॉग्रेटिंग अ टू डे कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन द सेक्रेटेरिएट। द चीफ मिनिस्टर सेड द फर्स्ट goal of the administration was to create peace in areas of public gathering and no room was given to those intended to create chaos. He said that there should be no compromise in their action on crimes against women and children and the perpetrators of crimes should be arrested and punished. Moving over to Bengaluru, where the Center for Cellular and Molecular Platforms, a deep tech innovation hub based out of Bengaluru, has entered into a strategic partnership with the Department of Health and Family Welfare, Government of Karnataka, to strengthen the public's health settings through indigenous and innovative health solutions. The partnership will facilitate identification, implementation and field integration of innovative health technologies in the state for augmenting infrastructure and healthcare delivery across primary to tertiary healthcare centres in urban and rural areas. The MOU, which was recently signed between Karnataka Health Commissioner Sri D. Randeep IAS, Commissionerate of Health and Family Welfare Services, and Director CEO of C-Camp, Dr. Taslima Arif Saeed, has been formally announced yesterday in the presence of Minister for Health and Family Welfare, Government of Karnataka, Dinesh Gundurao. Now moving over, where the Telangana... In the Telangana news or the metro section, the Election Commission of India has begun reviewing poll preparedness in Telangana. The high-level team, headed by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, held a crucial meeting with enforcement agencies yesterday in Hyderabad. Over 20 agencies, including police and revenue departments, gave presentations before the commission about the poll preparations. The commission also held meetings with about 10 national and state political parties. Those were the updates of the metros from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Devendra, what's going on in Delhi, Mumbai and Kolkata?
Ji. दिल्ली पुलिस ने एक न्यूज पोर्टल के दो पत्रकारों प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में 46 लोगों की तलाशी और पूछताछ की गई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच आगे जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रीन वॉर रूम की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि इस रूम में निगरानी के लिए 17 सदस्यीय टीम को लगाया गया है। ये टीम प्राथमिक प्रदूषकों के स्तर, प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों और ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की निगरानी करेगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 5 अक्टूबर से दिल्ली में धूल प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा और ऐसे निर्माण स्थल जो धूल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार राजधानी के लगभग 150 किसानों के 130 करोड़ रुपए के बकाया मुआवजे का भुगतान नहीं कर पा रही है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जसोला और मदनपुर खादर से लगे गांवों की जमीन को सरकार ने 1987 में अधिग्रहित किया था। उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहित जमीन का किसानों को मुआवजा देने का दिल्ली सरकार को आदेश दिया था, लेकिन सरकार किसानों को मुआवजा देने में असफल रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कल दक्षिणी दिल्ली में जैतपुर से संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादी शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को इसकी तलाश थी और इस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। शाहनवाज के अलावा 2 और अन्य वांछित आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एचएस धालीवाल ने बताया कि शाहनवाज के ठिकाने से पाकिस्तान स्थित संचालकों की ओर से भेजे गए बम बनाने के सामान तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मुंबई का रुख करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कल मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 4th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने विश्व व्यापार एक्सपो में विभिन्न देशों के स्टॉलों का दौरा किया जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर केंद्रित है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के सहयोग से 2 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड धारकों के लिए एक विशेष दिवाली पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें 100 रूपये की रियायती कीमत पर 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, आधा किलो सूजी, बेसन, गेहूं का आटा और पोहा शामिल है। पहले दिवाली पैकेज में सूजी, बेसन और चीनी तथा तेल शामिल था। इस वर्ष राज्य सरकार ने पोहा और मैदा भी इसमें शामिल किया है। और कोलकाता का रुख करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को बताया कि डीवीसी ने मैथन और पंचेत बांध से 90 क्यूसेक पानी छोड़ा है। झारखंड में हो रही भारी बारिश और पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश के कारण इन दोनों बांधों में जलस्तर बढ़ रहा है। मंगलवार को राज्य सचिवालय ने सिंचाई और जल मार्ग विभाग को डीवीसी अथॉरिटी और झारखंड सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने का आदेश दिया था। और अब जान लेते हैं महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, यानी मौसम सुबह का ठंडा हो गया है वैभव। और दिन में तापमान 34 रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा जबकि अधिकतम 33 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। कोलकाता में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाओं के बीच अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री। हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु का मौसम कैसा रहेगा वैभव?
यस देवेंद्र, स्टार्टिंग विद चेन्नई व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, द मिनिमम टेम्परेचर विल बी 27 एंड द मैक्सिमम विल बी around 36. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees and the maximum will be around 28. Hyderabad is also expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between 23 and 31 degrees Celsius. And very rightly said, Devendra, as I was coming in the morning on my two-wheeler, it was really chilly and I think the weather has started to change, and it was a request to all our listeners that we should actually just take care of ourselves. Get yourself that warm, lovely, hot beverage. Rich cup, and of course keep listening to our news magazine program Aaj Savere, in which now it's time for a special program narrated and scripted by Ojaswi Gupta. This is Kaleidoscope.
Hello and welcome to Kaleidoscope. This is your host for today, Ojaswi Gupta. Now get ready for a laughter-filled ride as we bring to you some hilariously relatable stories from our very own India. So it's time to tickle your funny bone with a touch of desi flavor. Our first story takes us to a bustling street in Mumbai, where a group of energetic aunties decided to form a competitive Pani Puri eating championship. Yes, you heard it right. These fearless ladies gathered around the street vendor with their plates piled high with crispy puris and tangy chutney filled golgappas. The competition was fierce as they raced against the clock, munching and laughing their way to victory. Some even had secret strategies like disguising themselves with big sunglasses to confuse their opponents. In the end, everyone had a blast, and the real winner was the vendor, who had to restock his supplies twice as fast. Get ready for a mouth-watering story from the streets of Amritsar, the land of delicious food. A street vendor decided to create the world's longest samosa, a crispy triangle of joy that could feed an entire neighborhood. This gigantic samosa was so big that it required a forklift to fry and a crane to flip it. The entire town gathered to witness this culinary masterpiece, eagerly awaiting their turn to take a bite. As the samosa was sliced into portions, people lined up with plates in hand and the aroma of spices filled the air. It was a feast fit for the kings and queens, reminding us that in India, food is not just a meal, it's a celebration.
I'm up in the morning, I want a samosa. Bad time in the evening, I want a samosa. Space in my tummy, I want a samosa. Take all my money, I want a samosa. Mummy said, beta, drink your dodo. I said only if you bring more biscuit. Failed in my class, that is no good. Mummy said to hide, I had no clue.
a samosa. Cause I don't like the pizza plate, I want a samosa. Don't wanna check my weight, I want a samosa. Girl on my wedding date, better eat samosa.
And now our final story takes us to a wedding in a small village in Rajasthan, where a playful twist on the traditional chuta chupai, hitting the groom's shoes, took place. The mischievous bride side devised a clever plan to auction off the groom's shoes to the highest bidder. Friends and family engaged in a hilarious bidding war, with aunties shouting exaggerated amounts and uncles playfully bribing the auctioneer. The groom, barefoot and desperate, watched in both agony and amusement. Finally, the shoes were sold for a priceless sum, and the victorious bidder returned them with a mischievous grin. Who knew that hiding shoes could turn into a hilarious wallet-emptying affair?
Dulhe ki saaliyo, hare dupatte waaliyo. Dulhe ki saaliyo, hare dupatte waaliyo. Jhoote de do, paise le lo. Jhoote de do, paise le lo.
Dulhan ke de.
And that's a wrap on our Daily Dose of Kaleidoscope. We hope these stories brought back fond memories and left you with a big smile on your face. Remember, laughter knows no boundaries, and the absurdity of life is something we can all relate to. So that's all then in the edition of Kaleidoscope. Do send us your feedback at duniyarangbirangi10@gmail.com. Until then, namaskar.
और कैलेडोस्कोप के बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के दिन के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र आपके लिए. आज 4 अक्टूबर है और आज ही के दिन 1535 में अंग्रेजी भाषा में पहली संपूर्ण बाइबल छपकर तैयार हुई थी, जिसे माइल्स कोवरडेल ने तैयार किया था. 1957 में सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में रवाना किया. यहीं से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई और तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक नई स्पर्धा शुरू हो गई.
Today is the cinnamon roll day, which is celebrated in Sweden and Finland. I'm sure all the lovers of cinnamon roll across the world would love to relish this today especially. It is also the day of peace and reconciliation for Mozambique. It's the independence day for the Republic of Lesotho from the United Kingdom, which gained independence in 1965. It is celebrated as the World Animal Day. And also today, the 4th of October, is the beginning of the International World Space Week.
जी, 1969 में चीन ने अपनी मुख्य भूमि के पश्चिमी क्षेत्र में हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने का ऐलान किया और यही चीन का पहला भूमिगत परीक्षण भी हुआ. 1977 में विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया. संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह पहला हिंदी भाषण था.
In 1958, the current constitution of France was adopted. In 2006, WikiLeaks was launched. And in 2022, on this very day, that is last year, Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zillinger were jointly awarded the Nobel Prize for Physics.
1977 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके 16 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. और अब याद करते हैं, नमन करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है. इस क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा को. भारत के उन महान अमर सपूतों में श्याम जी कृष्ण वर्मा का भी नाम आता है, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ भेंट चढ़ा दिया. ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लगातार स्वतंत्रता के लिए नवयुवकों को प्रेरित करने में अपना जीवन लगाया. स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में रहकर मुखर हुए. संस्कृत और वेद शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की और उन्होंने तत्कालीन रतलाम में 1985 से 1989 तक दीवान के पद पर काम किया.
Shyamji Krishna Varma was an Indian patriot, lawyer and a journalist who founded the Indian Home Rule Society, the India House, as well as the Indian Sociologist in London. Also remembering a great freedom fighter, Kumaran or Kumaraswamy Mudaliar, also known as the Tirupur Kumaran or the Kodi Katha Kumaran, an Indian revolutionary and freedom fighter who participated in the Indian independence movement. He died from injuries sustained from a police assault on the banks of Noyal River in Tirupur in 1932. At the time of his death, he was holding the flag of the Indian nationalists, which had been banned by the British, giving rise to the epithet Kodi Katha Kumaran in Tamil, which means Kumaran who protected the flag.
20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर महान रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आज जयंती है। सबसे अधिक प्रसिद्धि की अगर हम बात करें उनकी लिखी पुस्तकों में या रचनाओं में तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारण करने में प्रमुख स्थान रहा। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में सन 1884 में हुआ और 1888 में वे अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर गए तथा वहीं पर विद्याध्ययन आरंभ किया। 1892 में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर में सदर कानून गो के रूप में हुई और वे पिता के साथ मिर्जापुर आ गए। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा, जिसमें काव्य प्रवृत्तियों और कवियों का परिचय भी है और उनकी समीक्षा भी लिखी, तो उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता समसामयिक काव्य चिंतन संबंधी जागरूकता भी रही। और प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री कस्तूरी बाई की भी आज जयंती है। वो माखनलाल चतुर्वेदी की बहन थी। कस्तूरी बाई बाल्यकाल से ही राष्ट्रीयता के संस्कार में उनका पालन पोषण हुआ। महिला संगठन, चरखा सिखाने की कक्षा लेना, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों का विरोध करना उन्हें उनके प्रमुख आंदोलन कार्य थे। और
And now, wishing a very happy birthday, remembering Leroy Frank Van Dyke, a country music and honky-tonk singer and guitarist, best known for his hits The Auctioneer, which came out in 1956, and the one which we have, which came out in 1961, Walk On By.
If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't. Say hello. I belong to another. It wouldn't look so good.
And also wishing a very happy birthday to Barbara Kuman, also known by her stage name Barbara Kay, an American singer-songwriter based in Austin, Texas, known for her signature song, The Future Is So Bright, I Gotta Wear Shades.
बंगा विभूषण से सम्मानित संध्या मुखर्जी की आज जयंती है। संध्या मुखर्जी को मुख्य रूप से बंगाली गायन में रुचि रही, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एक शास्त्रीय और अर्ध शास्त्रीय गायिका के रूप में संध्या मुखर्जी ने कई बंगाली और कई हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी। उन्होंने एसडी बर्मन, मदन मोहन, नौशाद, अनिल विश्वास और सलिल चौधरी जैसे जाने माने और सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ काम किया।
कोई समझाए रे क्यों आज नजर शर्माए रे, ये बात कोई समझाए रे क्यों आज नजर शर्माए रे।
And wishing a very happy birthday to the legendary playback singer and actor Shailendra Singh. He got his first major break when Raj Kapoor signed him for his film Bobby and the song Main Shayar To Nahi became a national international success.
Main Shayar To Nahi Magar Hai Haseen Jab Se Dekha।
और देखा की बात आई तो उनके लोकप्रिय गानों में एक और गाना है, जब से हमने तुमको देखा। आइए सुनते हैं।
तुमको देखा, तुमने हमको देखा है दिल, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो।
और इसी गीत के साथ अब हम चाहेंगे अपने श्रोताओं से अनुमति कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की.
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ लवली डे यू ऑल.
नमस्कार.
दीवाना आंखों का रह के मिलना मिलके बिक जाने.